प्रवचन सार, प्रवचन सुधा, लेक्चर नंबर 670। ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयनियाणं, नमो वक्षायाणं, नमो लोये सर्वसाहूणं, सुरसुरनरपतिवन्दने प्रविनाष्टगाति कर्मणे प्रमणकरो धर्मकर्ता तीर्थ श्रीमहावीरने वैशेषतीर्थंकरने सौ सिद्ध शुद्धास्तित्वने मुनिगानदुवचारीकृत कवीर्याचरण संयुक्तने ते सर्वने साते तथा प्रत्येकने मंडुवणी मनुजक्षेत्रे वर्तता अरहंतने अरहंतने सौसिधने नमस्करण करिए गणधराने अध्यापको ने सर्वसाधु समूहने पशुशुद्ध दर्शन ज्ञान मुख्य पवित्र आश्रम पामिने प्राप्ति करो साम्यने येनापि शिव प्राप्ति मने।
आचार्य श्री कुंतुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमागम ग्रंथ है। उस पर अमृतचंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जैसेनाचार्य ने तात्पर्य उत्ति टीका लिखी है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं वे प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। उसमें से आठवीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 95 पर हम आ गए, 95। ये नीचे से दूसरा पैराग्राफ वहां से हम पढ़ेंगे। श्वेतांबर पक्ष तो कल्पित है। देखो श्वेतांबर और सानुकवासी इसको कहेंगे। सानुकवासी संप्रदाय में गुरुदेव जन्मे थे, उनके तो सभी शास्त्रों का अभ्यास था वहाँ के, और श्वेतांबरों के भी सभी ग्रंथ सभी शास्त्र उन्होंने पढ़े थे, और बाद में तो दिगंबर शास्त्रों का भी उनका अभ्यास हुआ था। तो ये ऐसे ही किसी को नहीं बोल रहे, हम भी दिगंबर हैं पर हमको मालूम नहीं श्वेतांबर शास्त्र में क्या लिखा है। तो वही बता सकता है जिसने उसका सारा ही पूरा के पूरे ग्रंथ पढ़े हैं। वो तो हमेशा कहते थे कि लाखों श्लोक पढ़ा है, हजारों शास्त्र पढ़े हैं, ऐसा हमेशा कहते थे। तो श्वेतांबर पक्ष तो कल्पित है, सत्य वस्तु है नहीं, शास्त्र कल्पित बनाया है। क्योंकि बाद में बने ना, कुंकुंदाचार्य भगवान हुए तो उनके पहले पहले श्वेतांबर मत स्थापित हुआ था नया नया, इसलिए उन्होंने भी उसका बहुत निषेध किया है। तो कहते शास्त्र सब कल्पित बनाया है, हा हा, कल्पित पंथ चलाया है। दिगंबर तो सनातन सत्य वीतराग त्रियोग के नाथ अनादि सर्वज्ञों ने कहा मार्ग यह है। समझ में आया? दो तीन पंक्ति में इतना रखा है, पुद्गल परिणाम आत्मा का कर्म है। क्या कहते हैं? पुद्गल जो कर्म है जड़ कर्म, वह परमाणु की कर्म पर्याय है। परमाणु जो जड़ है उसकी कर्म पर्याय है वह पुद्गल परिणाम है। आठ जड़ कर्म है वह जड़ परमाणु है, कर्म पर्याय उसकी है। पुद्गल परिणाम यानी जड़ का परिणाम आत्मा का कर्म है, वही पुण्य पाप रूप द्वैत है। यह तो व्यवहार का कथन है। ये जड़ कर्म आत्मा का है कहना, ये क्या है? व्यवहार का कथन। और उसमें भी पुण्य और पाप रूप दो प्रकार के कर्म होते हैं। तो कहते यह तो व्यवहार का कथन है, उसी को क्या कहते हैं? असद्भूत व्यवहार नहीं से कहा है, असद्भूत जो है ही नहीं है। अशुद्ध द्रव्य का कथन है, कहते हैं पर की अपेक्षा से कहा, इसलिए अशुद्ध द्रव्य का कथन। शुद्ध द्रव्य का कथन किसको कहेंगे? आशा बहन याद है, शुद्ध द्रव्य किसको कहेंगे? राग आत्मा का है, आत्मा उस रूप परिणामित हुआ है। उस दिन बात हुई थी ना, याद आ गया? शुद्ध द्रव्य किसको कहा था? शुद्ध द्रव्य का कथन कि राग आत्मा के पर्याय में है, उसको पहले स्वीकार करना है, बाद में वो जो स्वभाव का लक्ष्य करना वो बात बाद में आ जाएगी। तो उसको शुद्ध द्रव्य का कथन किया कहा था। मैंने कल बात बताई थी आपको, कोई दो जगह आया था, 76 पर और 94 पर। 94 पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ, 94 देख लो। कहते हैं शुद्ध द्रव्य का कथन है, क्या? कौन सा कथन? अपनी पर्याय अपने से है, यह स्व आश्रित शुद्ध द्रव्य का कथन है। राग है तो अशुद्ध, परंतु अपने से होता है, यह स्व द्रव्य की अपेक्षा से शुद्ध द्रव्य का कथन है। ख्याल में आई बात? अब जो कर्म जो है वो पुद्गल का है, वो कौन से द्रव्य का कथन होगा? शुद्ध के अशुद्ध? शुद्ध का अशुद्ध क्या कह रहे? शुद्ध कह रहे, पर कैसा हुआ? मैंने क्या पूछा? कर्म मैंने ये पूछा कर्म पुद्गल का कार्य है, पुद्गल द्रव्य का है, ये कथन शुद्ध है कि अशुद्ध है?
शुद्ध है।
देखो पुद्गल को पुद्गल का कहा है, देखो राग को आत्मा का कहा, ये शुद्ध द्रव्य का कथन। तो कर्म पुद्गल का कहा, वो भी शुद्ध द्रव्य, वो उसका शुद्ध द्रव्य है। यही फॉर्मूला वहां लगा लो ना, पुद्गल की पर्याय पुद्गल की कहना, पुद्गल की पर्याय पुद्गल की कहना, ये भी शुद्ध द्रव्य का कथन है। और आत्मा की पर्याय भले वो विकारी हो, वो आत्मा की कहना, वो भी शुद्ध द्रव्य का कथन। ख्याल में आई बात? ये बराबर प्रयोजनसार की बात ख्याल में रखना है। हाँ, नहीं तो हमेशा वो शुद्ध 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 हम समय सार की वो सुनने की इतने आदि हो गए कि दूसरी शुद्धता ख्याल में नहीं आती है। हाँ, अभी यहाँ आए 96 पर आने, देखो सेकंड लाइन बीच में है ना, पर की अपेक्षा से कहा, इसलिए अशुद्ध द्रव्य का कथन। देखो राग आत्मा का है वो कहेंगे शुद्ध द्रव्य का कथन, और कर्म आत्मा का है कहेंगे वो अशुद्ध द्रव्य का कथन। ख्याल में आई बात? स्व की अपेक्षा से कहना शुद्ध द्रव्य का कथन है। भाई वहां कहीं ऐसा सुना नहीं, ये करो ऐसा सुना है। अभी किसी भी संप्रदाय में जाओ तो ये ऐसी चलती बातें, ये इतनी क्रिया करो तो हो गया धर्म। देखो ये ज्ञान में लेना बहुत महत्व की है, ये सब सारा निर्णय ज्ञान में होगा। फिर दृष्टि का विषय वो बात बाद में आती है, पहले द्रव्य गुण पर्याय सबको सुनिश्चित करना पड़ेगा। भगवंत ऐसी बात कहा है प्रभु, आहा एकांत खींच ले कि बस राग कर्म से ही होता है। तो कहते हैं पुद्गल परिणाम आत्मा का कर्म है, ये क्या होगा? व्यवहार ने यहाँ तो ये लिया है, हाँ जड़ कर्म की पर्याय आत्मा का कार्य है, आत्मा ने राग किया तो कर्म बंधन हुआ, तो कर्म बंधन का परिणाम आत्मा नहीं किए ऐसा है नहीं, वो ऐसा है नहीं सुनना बरोबर, नहीं तो पहले के वाक्य का ऐसा ही मान लेते हैं और हम भी ऐसा ही मानेंगे तो क्या फर्क पड़ा। फिर भी ऐसा कहना यह तो अशुद्ध निमित्त का कथन है, ये निमित्त से कह देते, वो व्यवहार नहीं का कथन है, वो निमित्त बताने के लिए। पुद्गल परिणाम आत्मा का कर्म है, वही पुण्य पाप रूप द्वैत है। इन्हें आत्मा का कह दिया और उसमें भी पुण्य कर्म और पाप कर्म ऐसे दो प्रकार उसमें भी हो जाते हैं। साता असाता कर्म में होते हैं ना, ये साता आदि ये पुण्य प्रकृतियाँ, असाता आदि उसको पाप प्रकृतियाँ कहेंगे। साता वेदनीय असाता वेदनीय पुण्य पाप कर्म में पड़ते हैं, वह द्वैत है। द्वैत ने वो दो बनाए, आत्मा पुद्गल परिणाम का करता है, आत्मा पुद्गल परिणाम का करता है, देखो उसका ग्रहण करने वाला और छोड़ने वाला है, ऐसा जो नए वह अशुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप, यानी अशुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला है। किसको अशुद्ध द्रव्य का, कि आत्मा पुद्गल कर्म का करता है ऐसा कहना, यह कथन अशुद्ध द्रव्य का कथन है। अशुद्ध क्यों कहा, परद्रव्य की पर्याय उसने की ऐसा कह दिया, अपनी रागादि की परिणति उसकी अपने से हुई ये कहना वो उसका शुद्ध द्रव्य का कथन, और पर की परिणति उसने की ये अशुद्ध द्रव्य का कथन। यह तो अशुद्ध कथन निमित्त की अपेक्षा से कथन है, ऐसा है नहीं, यानी वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। हाँ ऐसा ज्ञान करे, देखो पहले में पहले ज्ञान की बात है ना, ऐसा पहले ज्ञान करना है, ऐसा ज्ञान करे तो उसकी दृष्टि द्रव्य पर जाए। ये ज्ञान और दृष्टि में अंतर है। ज्ञान क्या होगा, पर्याय का, अपनी पर्याय का, अपने अपने से अपनी पर्याय होती है, वो अपनी पर्याय अपने द्रव्य से होती है, ये कहना ये शुद्ध द्रव्य का कथन है, ये तो ज्ञान की अपेक्षा होगी। ऐसा होने के बाद उसकी दृष्टि द्रव्य पर जाए और जाने जाने से, अच्छा द्रव्य पर जाने से, उसकी द्रव्य पर दृष्टि जाए और द्रव्य पर दृष्टि जाने से राग का त्याग हो, इसलिए यह कहते हैं। यह प्रोसेस है समय दर्शन प्राप्ति का, परंतु राग में, राग मेरे में है ही नहीं ऐसा माने तो फिर छूटना भी रहता नहीं, अपने में है ही नहीं तो छोड़ने का सवाल कहाँ। हाँ मेरा द्रव्य स्वभाव त्रिकाल है, उसमें है नहीं पर्याय में है, और मैं पुद्गल परिणाम का करता नहीं, पुद्गल परिणाम मेरे राग का करता नहीं, फिर भी कहना वह अशुद्ध नय से व्यवहार नय का कथन है। ये समझ में आई बात, असद्भूत व्यवहार है उसे यहाँ अशुद्ध नय कहा है, समझ में आया, यानी अशुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला वह असद्भूत व्यवहार है, लेकिन उसको यहाँ अशुद्ध कहा, और यहाँ अशुद्ध निश्चय ने जो कहा है उसे स्वद्रव्याश्रित शुद्ध द्रव्य कहा। अशुद्ध निश्चय ने किसको कहेंगे, ये रागादि को आत्मा का कहने अशुद्ध निश्चय नहीं हुआ, उसी को यहाँ स्वद्रव्याश्रित शुद्ध कहा, उसको यहाँ शुद्ध द्रव्य का कथन कह दिया। ख्याल में आती बात, समझ में आया, पुद्गल परिणाम का आत्मा करता है यह अशुद्ध नय का व्यवहार नय का कथन है, परद्रव्य है ना, और परद्रव्य परिणाम राग का करता है वह अशुद्ध द्रव्य का व्यवहार नय का कथन है। अशुद्ध निश्चय नय कहा है वहां पर, यहाँ अशुद्ध नय केवल अशुद्ध द्रव्य का कहा, अशुद्ध द्रव्य का कथन अलग बात है और अशुद्ध निश्चय नहीं अलग बात है। फिर से देखो, देखो पहले ही लाइन से देखो ना, असद्भूत व्यवहार है उसे यहाँ अशुद्ध नहीं कहा, वो असद्भूत व्यवहार है लेकिन उसको यहाँ अशुद्ध कहा, और यहाँ अशुद्ध निश्चय नय जो कहा है, ये अशुद्ध नय अलग बात, अशुद्ध निश्चय नय अलग बात। निश्चय क्यों कहा, आत्मा की पर्याय आत्मा को के कहना, परंतु अशुद्ध पर्याय है, अशुद्ध पर्याय आत्मा के कहना है, अशुद्ध निश्चय नय हुआ। आपको याद होगा ना, नय चक्र तो आपने बराबर किया, अशुद्ध निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय, परम शुद्ध निश्चय नय, हुआ ना तो वैसे ही। तो यहाँ अशुद्ध निश्चय ने जो कहा है उसे स्वद्रव्याश्रित शुद्ध द्रव्य कहा। अशुद्ध निश्चय ने किसको कहा, विकारी परिणाम आत्मा की कहना, ये अशुद्ध निश्चय नहीं हुआ, उसी को यहाँ शुद्ध द्रव्य का कथन कह दिया। यहाँ तक तो बात ख्याल में, स्वद्रव्याश्रित शुद्ध द्रव्य कहा, समझ में आया। पुद्गल परिणाम का आत्मा करता है यह अशुद्ध नय का व्यवहार नय का कथन है, जो पहले लाइन में बताया था असद्भूत व्यवहार वही बात है। परद्रव्य है ना, और परद्रव्य परिणाम राग का करता है वह अशुद्ध द्रव्य का व्यवहार नय का कथन है। अशुद्ध द्रव्य क्यों, एक की पर्याय दूसरे द्रव्य की कह दी, यह अशुद्ध द्रव्य का कथन हुआ, और राग को आत्मा का कहना, ये शुद्ध द्रव्य का कथन हुआ। वास्तव में तो असद्भूत व्यवहार ने जड़ की पर्याय और अपने पर्याय में है, वह असद्भूत व्यवहार ने से शुद्ध पर्याय है। क्या कहा, वास्तव में असद्भूत व्यवहार ने जड़ की पर्याय, एक ये वाक्य हुआ, और अपने पर्याय में है वह सद्भूत व्यवहार ने से शुद्ध पर्याय है। सद्भूत व्यवहार ने क्यों कहा, क्योंकि पर्याय की, पर्याय का लक्ष्य क्या है ना, अपनी है, तो उसको सद्भूत कहा। हाँ भेद है, इसलिए व्यवहार ने कहा, तो शुद्ध पर्याय है। और अशुद्ध निश्चय से राग है, निश्चय से अशुद्ध निश्चय भी व्यवहार है, ये अशुद्ध निश्चय नहीं भी, वो तो निश्चय नहीं की अपेक्षा उसको भी व्यवहार कहेंगे। देखो देखो, जैसे निश्चय नहीं कि आप ही ने भेद बताए ना, अशुद्ध निश्चय नहीं, शुद्ध निश्चय नहीं, फिर परम शुद्ध निश्चय
नहीं,
साक्षात हाँ परम शुद्ध निश्चय। तो एक एक की अपेक्षा एक को व्यवहार कहेंगे, दूसरे को हाँ व्यवहार कहेंगे, यही बात बता रहे। देखो फिर यहाँ क्या कहे, नीचे से तीसरी लाइन, अपनी पर्याय में है वह सद्भूत व्यवहार नय से शुद्ध पर्याय है, और अशुद्ध निश्चय से राग है। सद्भूत व्यवहार नय से शुद्ध पर्याय का अर्थ क्या, सद्भूत व्यवहार नय ने अपनी पर्याय है, उसको शुद्ध पर्याय ने क्या, शुद्ध द्रव्य का कथन। शुद्ध पर्याय ने पर्याय विकारी है, पर सद्भूत व्यवहार नय से वो अपनी है ना, पर्याय भेद किया इसलिए उसको व्यवहार नय में डाला, पर अपनी है इसलिए सद्भूत कहा। पर शुद्ध पर्याय ने शुद्ध द्रव्य का कथन है, क्योंकि शुद्ध द्रव्य गुण पर्याय सब लेना है ना, शुद्ध द्रव्य का कथन है, शुद्ध पर्याय का अर्थ है यहाँ पर। और अशुद्ध निश्चय से राग है, उसी जो शुद्ध द्रव्य का कथन है तो राग को आत्मा का कह दिया, परंतु वो राग को अशुद्ध निश्चय से उसको अशुद्ध निश्चय नहीं कहेंगे, उसको राग आत्मा का कहना। निश्चय से अशुद्ध निश्चय भी व्यवहार है, हाँ, क्योंकि हम देखे ना ऊपर ऊपर हम देखेंगे तो नीचे के जो है उसको हम व्यवहार कहेंगे। बनिए को ऐसा निर्णय करना, बनिए के हाथ में जैन धर्म आया और उसको फुर्सत नहीं है व्यापार धंधे से, है ना। एक्चुअली बनिया है तो वो बराबर व्यापार में यानी हिसाब में चौक होना चाहिए, तो इसका हिसाब रखना पड़ेगा। एक जन ने लिखा है, बड़ा ऐतिहासिक है, उसने लाखों पुस्तक देखे होंगे, जापान का बड़ा ऐतिहासिक है, गुरुदेव हमेशा उसको याद करते थे। उसने कहा है, जैन धर्म अनुभूति स्वरूप है, यानी कि राग है, परंतु अंतर आत्मा का अनुभव करना वह जैन धर्म है। परंतु यह जैन धर्म बनिए को मिला, बनिया धंधे में घुस गया है। वो गुरस्व करना, निर्णय करने का ठिकाना नहीं। ऐसा जो नए पहले जो बोर्ड के साथ इसको लेना, 96 पेज पर वो बोल्ड लेटर क्या था लास्ट में, ऐसा जो नए वो अशुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप है ना, उसके साथ इसको लेना। ऐसा जो नए वह अशुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप व्यवहार नय है। अशुद्ध द्रव्य क्यों कहा, एक कर्म को आत्मा ने बांधा है ऐसा कहना। पुण्य पाप जो कर्म है वो उसमें दो पना है, परंतु आत्मा ने वो कर्म बांधा ऐसा कहना वो अशुद्ध द्रव्य का निरूपण है। परद्रव्य के पर्याय आत्मा ने किए ऐसा कहना, तो अशुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप व्यवहार ने है। उसकी व्याख्या नीचे है, विशेष लेंगे। अभी नया प्रवचन प्रारंभ करते हैं 98 पेज से 98 प्रवचन सार 189 गाथा यहाँ तक आया है। यहाँ क्या कहते हैं, आत्मा में जो राग होता है, राग पुण्य पाप का परिणाम, परिणाम की बात है, पुण्य पाप कर्म की बात नहीं है, परिणाम की बात है। उसका कर्ता आत्मा है, राग का ग्रहण करने वाला भी आत्मा है और राग को छोड़ने वाला भी आत्मा है। उत्पाद वे होता है ना पर्याय में, पर चीज का ग्रहण त्याग आत्मा में है नहीं, यानी कर्म का ग्रहण त्याग आत्मा कर ही नहीं सकता। वो क्या, किसका ग्रहण त्याग कर रहा है, राग का। राग चाहे तो शुभ दयादान व्रत भक्ति का हो, चाहे तो अशुभ राग हो, वह अपने पर्याय में अपने से होता है। ये मूल बात, अपनी पर्याय में ये तो न किया और अपने से होता है। और ये क्या समझता है, ये कर्म ने कराया, ऐसा उसका उदय आया इसलिए हमको हुआ, यानी वो अपना दोष कर्म पर डालता है ना। राग का कर्ता भी आत्मा है और राग दुख रूप है उसका भोक्ता भी आत्मा है। तो कौन से राग का भोक्ता है, जो दुख रूप है। हाँ तारा पे, पुण्य राग यानी शुभ राग का कि अशुभ राग का, कौन दुख रूप है, दोनों है। अच्छा समझ में आया, यह उसे शुद्ध द्रव्य का कथन कहते हैं। ये यहाँ का मुख्य पॉइंट है, राग आत्मा के पर्याय में आत्मा से होता है और उसे यहाँ क्या कहा, शुद्ध द्रव्य का कथन है। तो पर्याय की बात, परंतु यहाँ अशुद्ध द्रव्य का कथन कहा है, यानी अर्थात स्व आश्रय से जो मलिनता अपने से उत्पन्न हो और अपने से कर्ता भोक्ता हो, वह स्व आश्रय की अपेक्षा से शुद्ध द्रव्य का कथन कहने में आया है। आश्रय ने उस अपने ही द्रव्य गुण पर्याय का कथन है वहां पर, है तो पर्याय का कथन। समझ में आया, सूक्ष्म बात है, यानी वो राग पर्याय है परंतु उसको शुद्ध द्रव्य का कथन कहने में आता है। यह नीचे कहा, देखो ऐसा जो नए वह अशुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप व्यवहार नय है। वो कल बात यानी पहले प्रवचन में बात हो रही थी ना लास्ट में, कौन सी, कर्म जो है वो पुण्य पाप रूप दो प्रकार का है और वो आत्मा ने कर्म को बांधा, तो ये जब कहना है वो अशुद्ध द्रव्य का निरूपण है और उस रूप वो व्यवहार नय है। आगे लिखा है देखो, कर्म का परिणाम आत्मा करता है और कर्म का परिणाम आत्मा भोगता है, यह अशुद्ध द्रव्य व्यवहार नय का कथन है। ऐसा है नहीं परंतु निमित्त है, तो ऐसा कहने में आया, कथन होगा ऐसा, परंतु उसमें से सब लेना चाहिए। निमित्त का अर्थ आत्मा राग करता है तब कर्म बंधन का परिणाम होता है, ऐसा निमित्त देखकर अशुद्ध द्रव्य का कथन होता है कि पुद्गल परिणाम का कर्ता आत्मा करता है। राग किया ना, तो राग से जो कर्म बंधन हुआ तो राग का करता है तो परम परिणाम का करता है, ऐसा व्यवहार का आरोपित कथन करने में आता है। कितना सरल करके समझा रहे, ऐसी बात समझ में आता है। यह तो प्रवचन सार है, भगवान त्रिलोकनाथ परमेश्वर के मुख से निकली वाणी दिव्य ध्वनि का सार है, वो निकली में नीरस हो जाए। सूक्ष्म बात है भाई, यहाँ तो ऐसा कहा कि एक तो पांच इंद्रिय के विषय में पर को जानने में रुकता है, तो अपने को जानने में उसे फुर्सत नहीं, वो खूबी रक्षो करना। लेकिन यहाँ तो कहते हैं कि स्व को बाद में जानना, पहले पर्याय में राग आदि है उसका यथार्थ ज्ञान हो तो उसे द्रव्य का ज्ञान होना ही चाहिए। क्या कहते हैं, स्व को बाद में जानना कहते हैं। पहला कार्य क्या है, पर्याय में राग आदि है उसका यथार्थ ज्ञान हो, कैसा यथार्थ, वो अपने से हो रहा है ये यथार्थ ज्ञान, तो उसे द्रव्य का ज्ञान होना ही चाहिए, क्योंकि द्रव्य उस रूप परिणमित हो रहा है, पर द्रव्य में राग आदि नहीं है, वो पर्याय में है। क्या कहा, सूक्ष्म बात है भाई, जिसने अपने पर्याय में जो राग होता है वह अपने में करता है और अपना कार्य है ऐसा नहीं जानकर आत्मा पुद्गल का करता है और अपना कार्य पुद्गल का है ऐसा जाना, वह तो अशुद्ध द्रव्य निमित्त का व्यवहार नय का कथन है। और अपने में राग होता है, ये तो व्यवहार नय का कथन बता दिया पहले तीन लाइन में। दूसरी बात क्या, अपने में राग होता है, हाँ राग का परिणाम करने वाला मैं हूँ, राग मैंने ग्रहण किया है, मैं छोड़ने वाला हूँ, वह है पर्याय, लेकिन अपना परिणाम देखकर उसे शुद्ध द्रव्य का कथन कहने में आया, है पर्याय की बात पर उसे शुद्ध द्रव्य का कथन कहते। ऐसी बातें वीतराग सर्वज्ञ परमेश्वर दिव्य ध्वनि में जो कहते हैं उसे संतो करुणा करके जगत को बात करते हैं। यह आया नीचे, देखो नीचे है, नीचे है फुटनोट, यहाँ शुद्ध द्रव्य का कथन एक द्रव्याश्रित परिणाम की अपेक्षा से, एक द्रव्याश्रित ने उसी द्रव्य की पर्याय उसी क्यों कहना, ये शुद्ध द्रव्य का कथन, अपने द्रव्य स्वद्रव्य के परिणाम के आश्रित कथन है, द्रव्य का कथन नहीं। क्या कहा, ये स्वद्रव्य, देखो देखो हाँ, हाँ बहुत सारा वहाँ कथन है ना, उसमें से थोड़ा थोड़ा लेके समझाएंगे। नहीं नहीं यहाँ पर भी फुटनोट पहले हमने पढ़ा, कल पढ़ा था ना, हाँ
गुजराती डाला
और हमने दो बार लिया था ना उसको, पढ़ा था,
परसों लिया था,
हाँ हाँ उसमें से थोड़ा अंश यहाँ लिखा है इसलिए डॉट डॉट लिखा। क्या कहते हैं फिर सब, यहाँ शुद्ध द्रव्य का कथन एक द्रव्याश्रित परिणाम की अपेक्षा से, परिणाम की बात है, अपने स्वद्रव्य के परिणाम के आश्रित कथन है, द्रव्य का कथन नहीं, यह तो द्रव्य के परिणाम का कथन है, फिर भी उसको शुद्ध द्रव्य का कथन कह रहे हैं, परिणाम की अपेक्षा से जानना चाहिए। ये ऊपर जो डॉट डॉट छोड़ा था वो यहाँ वाक्य पूरा हो रहा है, उन्होंने इन्वर्टेड में डाला, हमेशा बोल्ड में डालते थे, ये फुटनोट है ना इसलिए वो सब बोल्ड में नहीं डाली उन्होंने, तो ऊपर जो वाक्य छोड़ा था, यहाँ शुद्ध द्रव्य का कथन एक द्रव्याश्रित परिणाम की अपेक्षा से जानना चाहिए और अशुद्ध द्रव्य का कथन एक द्रव्य के परिणाम अन्य द्रव्य में आरोपित करने की अपेक्षा से जानना चाहिए। यानी कर्म का जो परिणाम है वो जीव में आरोपित करके कथन किया कि ये जीव ने कर्म को बांधा, जीव ने कर्म को भोगा, ये क्या कैसा कथन है, अशुद्ध द्रव्य का। पुद्गल का परिणाम है उसका आत्मा करता है, यह आरोपित कथन है, उपचार का कथन उसको कहेंगे आरोपित है, उसको कहेंगे व्यवहार का कथन है, वास्तविक नहीं। और आत्मा में राग द्वेष पुण्य पाप वासना विषय आदि वासना होती है, इस परिणाम का जीव करता है, आत्मा उसको ग्रहण करता है, आत्मा उसको छोड़ता है। यह अपना स्व आश्रय की अपेक्षा से शुद्ध द्रव्य का कथन कहने में आया है। तो परिणाम फिर भी शुद्ध द्रव्य का ऐसा कहने में आया है, समझ में आया, ऐसा सूक्ष्म है भाई, है तो परिणाम की बात, परंतु वो तो अपने द्रव्य का अपने से होता है कहना, वो है शुद्ध द्रव्य का कथन। और पर का परिणाम अपने से होता है कहना, अशुद्ध द्रव्य का कथन। अब यहाँ टीका में, क्योंकि शुद्ध रूप और अशुद्ध रूप दोनों प्रकार से द्रव्य की प्रतीति की जाती है। शुद्ध रूप कैसे होगी, उस द्रव्य का उसी का परिणाम कहना, ये शुद्ध द्रव्य की प्रतीति, और अशुद्ध पर का परिणाम उसने किया ऐसे कह देना है। अंदर क्या कहते हैं, शुद्ध रूप यानी अपना परिणाम अपने से होता है वह शुद्ध रूप, भले राग है परंतु स्वद्रव्य का परिणाम है, इस अपेक्षा से शुद्ध रूप कहा। शुद्ध रूप और अशुद्ध रूप दोनों प्रकार से द्रव्य की प्रतीति की जाती है। किंतु यह निश्चय ने साधकतम कोई ऐसा ही मान ले कि विकार का परिणाम मेरा नहीं है, मेरे में नहीं है, तो वह झूठी दृष्टि है, दृष्टि भी झूठी कह दी उसकी। समय सार 75-79 बराबर है, गाथा में दृष्टि का विषय में ऐसा लिया कि भगवान आत्मा पूर्णानंद स्वरूप प्रभु उसकी जिसे दृष्टि हुई है, स्वभाव चिदानंद सच्चिदानंद प्रभु उसकी जिसे दृष्टि हुई है, अनुभव हुआ है, उसे राग है, वह अपना कार्य नहीं, वहाँ ऐसा लिया है। स्वभाव की दृष्टि हुई ना, तो स्वभाव चिदानंद भगवान निर्मानंद प्रभु है, उसकी दृष्टि हुई तो उसका कार्य तो निर्मल परिणाम उसका कार्य है, वहाँ ऐसा लिया। कहाँ, समय सर में, कब उसकी दृष्टि हुई तो कार्य भी निर्मल परिणाम का वो करता कहेंगे। और राग है वह कर्म करता, कर्म व्यापक है, और राग उसका व्याप्य है, राग उसका यानी कर्म का कार्य है, सूक्ष्म बात है। समय सार में तो राग कर्म का कह दिया, कर्म उसमें व्यापक है, फिर वो भावे भाव भी संबंध लगाया था ना उसमें, समय सार में ऐसा लिया। वह किस अपेक्षा से, अंदर चिदानंद प्रभु पूर्णानंद के नाथ का अवलोकन हुआ, अनंत काल में कभी 5 इंद्रिय के विषय को छोड़कर अपना विषय कभी अवलोकन किया नहीं था, क्योंकि परसन्मुखी दृष्टि थी ना, परसन्मुखी ज्ञान लगाया था, आत्मा भगवान कौन है उसका अवलोकन नहीं किया था। हा हा, 5 इंद्रिय का यह देखा, यह रूप देखा, रस चखा, वह तो सब परचीज है, समझ में आया। जब अपना भगवान आत्मा, हा हा, परमानंद की मूर्ति सच्चिदानंद प्रभु जिसने पर्याय उसमें झुका कर, क्या कहा, जिस जीव ने अपनी ही पर्याय अपने में ही झुका कर अपने स्वभाव की दृष्टि हुई, वह आत्मा परमात्मा स्वरूप है, ऐसी प्रतीति सम्यक दर्शन में हुई, ऐसी हुई प्रतीति उसी को हम सम्यक दर्शन कहेंगे। उसके स्वभाव का कार्य निर्मल परिणाम उसका कार्य और आत्मा उसका करता है, मलिन परिणाम जो होता है उसका कर्म करता है। क्या कहा, आत्मा की दृष्टि होने पर, अभी ये कौन सा ज्ञानी जीव लिया, वही आचार्य वहाँ क्या कह रहे हैं समय सार में, आत्मा की दृष्टि हुई, अब राग कुछ बाकी है कि नहीं है, है ना राग, हाँ, तो वो मलिन परिणाम है, तो ये तो तेरा नहीं, वो कर्म का है, उसको तो पुद्गल कह दिया। वो कर्म का कार्य है, वो उसे निकाल देने की अपेक्षा से उसका लक्ष्य छुड़ाना है, वो अपनत्व उसमें से छुड़ाना है, तो उसके कहते वो पुद्गल का है। समझ में आया भाई? एक और ऐसा कहे और एक और ऐसा कहते हैं। वो आता है ना कि बच्चा, कोई लड़का गलत मार्ग पर लगता है तो उसके पिताजी पेपर में अनाउंस करते हैं, यह मेरा बेटा आज से मेरा नहीं, ये मेरा पहले कह दिया, आज से मेरा नहीं है, उसके साथ जो कोई लेन देन कर, मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। ऐसा क्या कहते हैं? अभी ज्ञानी हुआ है, स्वभाव की दृष्टि हुई है, तो निर्मल पर्याय का करता उसको कहेंगे, पर मलिन पर्याय भी हो रही ना, आकर्म उसका करता है, तू नहीं जाओ, ऐसा कहते हैं, क्योंकि उससे नाता छुड़ाना है। वहाँ तो स्वभाव चैतन्य भगवान वितराग मूर्ति प्रभु, प्रभु का अकषाय स्वरूप है ना, प्रभु तो वितराग मूर्ति है, मूर्ति छे, उसमें राग बाग है नहीं, वस्तु के स्वभाव में दयादान का विकल्प भी उसमें तो है नहीं। क्या कहते हैं? स्वभाव में कहाँ है, वो तो पर्याय में है। ऐसी चीज जो परमात्म स्वरूप है, परमेश्वर भगवान भगवत स्वरूप है, आहा हा, इसका जिसने अंतर में अवलोकन किया, तो अवलोकन करने वाले का कार्य क्या कि निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है, यह उसका कार्य है, और उसका वह करता है। राग होता है उसका वह कार्य नहीं, उसका करता आत्मा नहीं, वह निकाल देने की अपेक्षा से बात की है। वह ऐसा लिया कि कर्म व्यापक है और विकार उसका व्याप्य कार्य है, अन्यथा तो व्याप्य व्यापक संबंध एक ही द्रव्य का होता है पर्याय के साथ, है ना, परंतु यहाँ कर्म के साथ लगाया, क्यों? दृष्टि की अपेक्षा से बात है। आत्मा व्यापक है और विकार व्याप्य है ऐसा नहीं कहा? अरे रे, समझ में आया? प्रश्नगत एक ही आचार्य दो प्रकार कहे? समाधान, कौन सी अपेक्षा कहते हैं? वहां दृष्टि प्रधान कथन है, वहां इन्हें समय सार में दृष्टि अभिप्राय स्वरूप की ओर ढल गया। परमानंद का नाथ पर अभिप्राय श्रद्धा ढल गई तो राग उसका कार्य है नहीं, क्योंकि द्रव्य और गुण पवित्र है, तो पवित्र का कार्य तो पवित्र होता है। ये बनिए की बात नहीं है, यह तो सूक्ष्म बातें हैं। भगवान तीन लोक के नाथ, इनका किस अपेक्षा से कथन है वह समझना चाहिए। वहाँ तो ऐसा कहा रे, वहाँ तो यहाँ तक कहा कि भगवान परमानंद प्रभु अवलोकन में आया, अपने ज्ञान की पर्याय में सारी वस्तु ज्ञेय रूप जानने में आई, तब अनुभव में सम्यक दर्शन हुआ, तब वस्तु है वह कर्ता और निर्मल परिणाम उसका कार्य है। समझे भैया? विकार कर्ता और विकार आत्मा का कार्य वहां नहीं। विकार करता क्यों कहा? कर्म का, वह स्वभाव की दृष्टि का कथन है। समझ में आया? यहाँ तो ज्ञान प्रधान कथन है, यहाँ इन्हें कहा प्रवचन सार में, वहाँ दृष्टि प्रधान कथन है, वहाँ इन्हें समय सार में। और आचार्य एक ही है, कुनकुंद आचार्य ने दोनों ग्रंथ लिखे हैं। बात समझ में आई? समय दर्शन के साथ में अभिप्राय जिसे सामान्य स्वरूप का हुआ है, उसे राग मेरा कार्य है करता है, उस विशेष का ज्ञान उसे यथार्थ होता है। समझ में आया? बहुत अटपटा मार्ग ऐसा है भाई। अनादिकाल से ये पांच इंद्रियों द्वारा पर को देखने में रुक गया है, हिंदी बहुत नहीं आती है, अंदर अखंडानंद प्रभु, अतीन्द्रिय आनंद का दल पिंड, अतीन्द्रिय आनंद का सारा घर, उसको देखने में कभी दृष्टि में ज्ञान में लिया नहीं, शास्त्र ज्ञान किया वह तो पर की ओर का लक्ष्य है, शास्त्र ज्ञान नहीं किया वो बात नहीं है, लेकिन जानने वाले को जाना नहीं। क्या रह गया जानना? कितने सारे शास्त्र पढ़ लिए, लोग पूछते कि हमने इतने पढ़े अभी कौन सा शास्त्र पढ़ूँ तो मुझे समय दर्शन होगा, तो कहते हैं लेकिन जानने वाले को जाना नहीं। जानने वाला पर को जानने में रुक गया, भले वो शास्त्र भी क्यों ना हो उसी में रुक गया, अटक गया वहीं पर। उसका अभ्यास करके तो अपना लक्ष्य करना था, वो बात रह गई और उसी को पढ़ने में रह गया। समझ में आया? वहाँ समय दर्शन की बात चलती है तब तो दृष्टि का अभिप्राय का विषय त्रिकाल स्वभाव है, उसका कार्य विकार है ऐसा होता नहीं। दृष्टि के विषय यहाँ तो दृष्टि के साथ जो ज्ञान प्रकट हुआ वह ज्ञान अपनी पर्याय में राग होता है, वह अपनी पर्याय में है, अपने से है, ऐसा ज्ञान जानता है। दृष्टि है वह निर्विकल्प है, अभेद अखंड की होती है। निर्विकल्प का विषय निर्विकल्प, निर्विकल्प ने भेद रहित, तो निर्विकल्प का विषय नहीं दृष्टि है वह निर्विकल्प है। तो दृष्टि का विषय कैसा है? निर्विकल्प अखंडानंद प्रभु है, अखंड बताया। और ज्ञान है वह सविकल्प है, ज्ञान होता ही सविकल्प है। तो केवल ज्ञान सविकल्प होता है कि निर्विकल्प? आशा बेन, हाँ तो सविकल्प है कि निर्विकल्प है? हाँ बोलो तारा बेन, सविकल्प ज्ञान ही सविकल्प होता है। वो भेदों को जानता है कि नहीं है? अरे एक एक भेद को अलग अलग जानता है, तो ज्ञान को हमेशा सविकल्प कहेंगे। वो राग वाला विकल्प नहीं समझना, भेद को जानना। ज्ञान का कार्य क्या है? अर्थ विकल्पात्मक होता है ना ज्ञान, हमने वो पहले पढ़ा था, प्रवचन सार में ही बताया। अर्थ में किसको लिया? स्वर पर सब, और उसको जानने वाला उसको कहेंगे अर्थ विकल्प। ज्ञान को विकल्प कह दिया था वहां पर। देखो ज्ञान है वह सविकल्प है, उसको साकार भी कहते हैं, और हाँ उसको निराकार कहेंगे दर्शन को। तो ज्ञान है वह सविकल्प है, स्व और पर दोनों का जानने वाला ज्ञान है। समझ में आया? स्व में भी स्वभाव भी लेना, वो पर्याय भी अलग लेना, सबको यथा जैसा है वैसा जानेगा, वो ज्ञान का कार्य है। दृष्टि दर्शन है, ये सम्यक दर्शन तो निर्विकल्प अभेद है, उसका विषय अभेद है। क्या कहते हैं? ये ज्ञान दर्शन वाला दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन वाला दर्शन है। वो कैसा है? निर्विकल्प अभेद का, यह मैं हूं इतनी उसमें सब है, अभेद अखंड होता है, उसका विषय अभेद है। अखंडानंद प्रभु उसका विषय है। हमेशा अखंडानंद क्यों कहते हैं? अखंड है ना, उसमें कोई खंड खंड नहीं, कोई भेद नहीं है। और साथ में जो ज्ञान हुआ देखो वह सविकल्प है। सविकल्प माने राग नहीं, क्योंकि विकल्प एक अर्थ उसका राग होता है, उसकी बात यहाँ नहीं है। स्वद्रव्य को गुण को पर्याय को जाने, यह ज्ञान की पर्याय का स्वभाव है। देखो स्वद्रव्य को भी जानेगा, गुण को भी जानेगा, पर्याय को भी जानेगा, तो ज्ञान की पर्याय का स्वभाव ही है जानना। समझ में आया? यहाँ ज्ञान प्रधान कथन में कहते हैं है निश्चय ने साधकतम यानी उत्कृष्ट साधक होने से ग्रहण किया गया है। भाषा देखो, राग मलिन पर्याय मेरा कार्य है और मैं करता हूँ, यह निश्चय ने आदरणीय है, साधकतम है। ये फुटनोट में बात हुई थी ना अपनी, ऐसा कहा, क्योंकि राग अपने में है और स्वयं करता है, वह यथार्थ है, ये दृष्टि के साथ जो ज्ञान है उसने इस तरह से जाना है, परंतु उस यथार्थ का ज्ञान सामान्य का यानी दृष्टि का विषय का हुआ है उसे यथार्थ ज्ञान होता है, यानी सम्यक दर्शन के साथ वो ज्ञान यथार्थ हो जाता है। समझ में आया? सूक्ष्म बात है भगवान, यह गाथा ही ऐसी है भाई, ऐसी बातें है। आहा, और भी सूक्ष्म आएगा, धीरे धीरे समझना, यह तो अपूर्व मार्ग है प्रभु। अरे मोक्ष जैसा जो अपूर्व मोक्ष मार्ग है उसको प्रकट करना है तो उसका कथन भी सूक्ष्म होगा ना। तेरी प्रभुता का पार नहीं नाथ, तेरी प्रभुता अनंती अनंती है। 85 की 27 गाथा में लिया है ना भाई, राग में भी कर्ता प्रभु आत्मा है, प्रभु है। मुमुक्ष कहते आत्मा की व्याख्या की है, वो जगदीशी आत्मा की व्याख्या की है 27 गाथा। आहा हा, प्रभु है आत्मा, लेकिन प्रभु कैसे कि अशुद्ध परिणाम को करने में भी प्रभु और शुद्ध परिणाम करने में भी प्रभु है, पर की कोई अपेक्षा है नहीं। क्या कहा? ये अशुद्ध परिणाम भी स्वयं करे उसमें भी वो स्वाधीन स्वतंत्र, शुद्ध परिणाम करने में भी स्वतंत्र स्वाधीन, उसमें भी प्रभु है। कहा ऐसी बात समझे नहीं और एकांत कर बैठे। हा, ज्ञानी को राग होता है वह दुख है, दुख है उसका कर्ता आत्मा है और दुख का कार्य भी आत्मा का है, क्योंकि जितने अंश में राग है उतना वहाँ दुख भी है। किसकी? ज्ञानी की बात कर रहे हैं, और वो कैसा कथन है? तो शुद्ध द्रव्य का कथन है। क्यों? अपने द्रव्य की पर्याय अपने से होती है, कह दिया। शुद्ध यानी स्व की अपेक्षा यानी स्व अपेक्षित परिणाम का कथन, परिणाम की बात है परंतु स्व की अपेक्षा कथन है तो उसको शुद्ध द्रव्य का कथन कहेंगे। और आत्मा कर्म का करता है वह तो निमित्त है ना, वह आरोपित कथन है, वास्तविक है नहीं, तो उसको क्या कहेंगे? अशुद्ध द्रव्य का कथन। धीरे से समझना प्रभु, अनादि से ऐसा शल्य रह गया है कि जैन साधु हुआ, 11 अंग का पठन किया, लेकिन वास्तविक शल्य अंदर रह गया, मिथ्यात्व शल्य। क्या कहते हैं? ये मोक्ष चाहता था इसीलिए तो साधुपना अंगीकार किया, पर वास्तविक शल्य अंदर रह गया, मिथ्यात्व का शल्य। और ऐसा भी नहीं कि केवल साधु हुआ और क्यों आचार कर रहे, अरे वो स्वाध्याय कर रहा है यानी 11 अंग का पठन वो ऑर्डिनरी बात नहीं है। अरे एक एक अंग का अगर आप कितना बड़ा होता है सुनेंगे तो आश्चर्य लगेगा। सबसे छोटा तो आचार अंग है, उसमें कितने पद है मालूम है? 18,000। और एक पद में अक्षर कितने होते मालूम है?
1634 करोड़।
हाँ 1634 करोड़ 83 लाख 7,888, इतने अक्षरों का एक पद, और ऐसे 18,000 पद का सबसे छोटा वो आचार अंग है। आगे आगे तो कितने बड़े हैं, सब मिलके तो द्वादश अंग के तो 112 करोड़ समथिंग आते हैं ना पूरे, इतने पद। तो कहते 11 अंग का पठन किया, अभी क्या बाकी छोड़ा होगा? 12वें अंगिक में भी 9 पूर्व का अभ्यास हुआ है उसका, 11 अंग और 9 पूर्व कहते उसमें। तो कहते राग है वह अपना है, ऐसा पूछे तो कहे कि ना राग ज्ञानी को होता ही नहीं है, अथवा राग है वह धर्म का कारण है, ऐसा मान लिया। समझ में आया? या तो माना रागी को ज्ञानी को राग होता ही नहीं, या तो ऐसा माना, या दूसरी ओर राग करते करते धर्म होता है ऐसा माना। पुण्य राग करेंगे मुनिपना लेंगे तो धर्म होगा तो मोक्ष मार्ग शुरू होगा ऐसा मानता है, यानी दोनों ही मान्यता को लगता है, ऐसा ही होता है ना।
हाँ
ऐसा ही कर रहे, उसी को ये मैं प्रतिमा अंगीकार की भी आगे की करना है, फिर आगे की करना है, अभी मुनि बनना है, अभी और मैं आगे बढ़ाऊँ ऐसा लगता है। और चाह तो है मोक्ष की, मोक्ष का नाम लेता है और मोक्ष के नाम से ये कार्य करता है।
मोक्ष का लक्ष्य
हाँ मोक्ष का लक्ष्य है, परंतु वो तो रास्ता ही गलत चुना है ना, वो तो मोक्ष तक कैसे पहुंचा गया? आश्रव से संवर होगा मानता है। देखो ऐसा है नहीं, राग है वह धर्म का कारण नहीं है, और उसने तो मात्र राग ने वो क्रिया को ही धर्म मान लिया, राग तो और दूसरी के बाजू रह गया। पर्याय में है वह अपने से है, वह शुद्ध द्रव्य स्व आश्रित परिणाम है, उसका यह कथन है। और कर्म का कर्ता आत्मा है वह व्यवहार ने का कथन है, क्योंकि पर का कर्ता है नहीं, सिर्फ निमित्त देखकर पर का कर्ता कहने में आया, ये कहने की बात है, कहने पुरता है वो ऐसी बातें। यहाँ निश्चय ने साधकता मैंने उत्कृष्ट साधक होने से ग्रहण किया गया है, ये राग को आत्मा का वो निश्चय ने से कह दिया उनको, उसको निश्चय ने कहा यहाँ वाला प्रवचन सार में। भाषा देखो बहुत सूक्ष्म बात, भगवान तेरी बात ऐसी है ना नाथ, कहते हैं कि पुण्य पाप का जो भाव होता है उसका कर्ता आत्मा है और कार्य अपना है, यह निश्चय नय का साधकतम, साधकतम यानी साधने वाली चीज है, यह साधकतम है यानी उत्कृष्ट साधक है। साधकतम का अर्थ राग अपना है ऐसा सिद्ध करने को कहा, राग अपना है और अपने से है, समझ में आया? देखो राग अपना है अपने से होता है, ये कबूल करना है स्वीकार करना है, इसको साधक कहा, साधक ने साधकतम कहा। पहले ये स्वीकार करेगा तो शुद्ध द्रव्य का लक्ष्य करके, जिसको कहेंगे द्रव्य गुण का लक्ष्य करके, ये राग छुटेगा उसका। निश्चय नए साधकतम यानी उत्कृष्ट साधक होने से ग्रहण किया गया है। देखो पुण्य और पाप, राग और द्वेष, विकल्प आदि का आत्मा करता है और उसका भोगता है, यह स्वनय की अपेक्षा से, शुद्ध द्रव्य की अपेक्षा से अपना है ऐसा ग्रहण किया गया है। सूक्ष्म बात है भगवान, अपने आप पढ़े तो कुछ सूझे ऐसा नहीं है, मार्ग ऐसा है प्रभु। यह तो तीन लोक के नाथ केवली से सिद्ध हुआ है, परमात्मा परमेश्वर जिनेश्वर देव पूर्ण परमात्मा दशा प्राप्त हुई, बाद में वाणी निकली नीरस्व, उस वाणी का यह सार है। ये कोई आली दुआली कथा कथा वार्ता करते हैं ऐसा है नहीं। मुमुक्षु पूछते राग परिणाम आत्मा का है यह शुद्ध नय का कथन, पूज्य गुरुदेव श्री कहते वह अपना है उस अपेक्षा से, स्वद्रव्य का परिणाम है उस अपेक्षा से शुद्ध द्रव्य का कथन है, और पर का करता है वह अशुद्ध द्रव्य का व्यवहार नय का कथन है। करता है नहीं और करता कहना वह व्यवहार है, कहने पुरता है ना, आरोपित कथन जिसको कहेंगे। विकार अपने में है और उसका कर्ता आत्मा है, वो एक्चुअल है ना अपने पर, आत्मा ही उस रूप परिणित हुआ है, आत्मा ही उसका कर्ता है। यहाँ तो विशेष कहा था कि निश्चय नए साधकतम उत्कृष्ट साधक होने से, निश्चय नए साधक है व्यवहार जो पर का कर्ता कहता है वह नए बाधक है, क्या कहा है? इन्हें अपनी पर्याय अपनी कहना वो तो साधक बताया, सूक्ष्म बात है बापू। आहा हा, अभी तो कोई ऐसा मानता है कि राग है वह अपना नहीं, और कोई मानता है कि राग है वह दुख रूप है, अपने में है ही नहीं, ज्ञानी को दुख है ही नहीं, ऐसी मान्यता एकांत मिथ्या दृष्टि है। ज्ञानी है फिर भी उसके दुख तो है, यहाँ यह बात सिद्ध करनी है, है? निश्चय नय, यह निश्चय नय कौन है? अपने पुण्य पाप का मलिन परिणाम का कर्ता आत्मा है, और आत्मा का वह अपना कार्य है, यह निश्चय नए साधकतम है। ये जो विकार हो रहे पर्याय में वो अपना कार्य है, तो ये निश्चय नए है, वो उसको साधकतम का, क्योंकि अपना परिणाम अपने से हुआ है और स्वतंत्रतया हुआ है। विकार परिणाम स्वतंत्रतया हुआ है, कर्म का निमित्त है तो हुआ है ऐसा नहीं। क्योंकि विकार परिणाम पर्याय में स्वतंत्रतया होता है, अपना कर्ता विकारी परिणाम, विकारी परिणाम कार्य, विकारी परिणाम साधन, विकारी परिणाम संप्रदान करके अपने में रखा, अपने से मलिनता हुई, मलिन के आधार से मलिनता हुई। यहाँ क्या कहते हैं, राग के षट कारक राग में बता रहे, विकारी परिणाम में सब बता रहे। कठिन बातें हैं प्रभु, मार्ग बहुत सूक्ष्म है। साधकतम कहकर, उत्कृष्ट साधक कहा ना, साधकतम कहा ना, साधक नहीं, साधकतर नहीं, साधकतम, साधक, साधकतर और साधकतम, उत्कृष्ट साधक। क्योंकि अपने पर्याय में राग है, यह ज्ञानी भी जानते हैं। समय दृष्टि जानते हैं कि मेरी पर्याय में राग है, मैं करता हूँ, मैं परिणमन करने वाला हूँ, कोई कर्म से विकार हुआ है ऐसा है नहीं। मुमुक्षु कहते श्रद्धा अपेक्षा से ऐसा मानते हैं कि पूज्य गुरुदेव श्री, श्रद्धा वह तो सामान्य का अभिप्राय, वह तो लेंगे कि इस यथार्थ परिणाम का ज्ञान जिसे हो, क्या कहते हैं, यानी वो तो सामान्य की बात है ना, सामान्य को ग्रहण करने वाली है, अभेद अखंड को। हाँ, तो कहते कि इस यथार्थ परिणाम का ज्ञान जिसे हो उसे सामान्य का अभिप्राय तो होता ही है, सामान्य के अभिप्राय बिना उसे यथार्थ ज्ञान होता ही नहीं। यह यथार्थ तभी कहेंगे ना उसको, सामान्य विशेष का जैसा है वैसा ज्ञान होगा तो वहाँ उसकी अपेक्षा है सामान्य के ज्ञान। मुमुक्षु कहते वह तो पूज्य गुरुदेशी है, लेकिन न्याय है ना प्रभु, समझ में आया ऐसी बात है भगवान, ऐसा मत समझना कि मुझे उलझन हो रही है। भगवान तीन लोक का नाथ, केवल ज्ञान प्रकट करने वाला तू है, वो तू दीर्घ और बिना बिंदी का, तेरी ताकत है, और यह समझ में न आए ऐसे कैसे हो, क्या कहते हैं, तो ये नहीं समझता वो नहीं समझता, अरे केवल ज्ञान लेने यहाँ से होने वाला है और ये नहीं समझे ऐसी बात क्यों करता है। यहाँ तो यह सिद्ध करना है, कोई ऐसा ही मान ले कि ज्ञानी हुआ धर्मी हुआ बाद में उसे राग होता ही नहीं, समझ में आया, और राग होता नहीं तो दुख होता नहीं, ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि है, उसे खबर नहीं। यह बात सिद्ध करते भाई, बाद में नीचे स्पष्टीकरण करेंगे। हाँ, यहाँ तो इस शब्द का स्पष्टीकरण है ना, यही रुकेंगे।
चावानी के ज्ञान दे सुझे लो कालो, सोवाणी मस्तक सदा देत हो।
लक्ष्मी